आचार्य रचित देवला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यहाँ अभी हम चतुर्थ पुस्तक में स्पर्शनानुगम में 155 पृष्ठ पर आए हुए हैं। कल हमने चंद्रों के संबंधी और उनके जो परिवार है, तारा नक्षत्र आदि, उसके संबंध में कुछ बातें देखी थी, फिर दोबारा उसको थोड़ा देखते हैं। ये विषय कहाँ से आया था? तो सासादन समय दृष्टि जीवों का जो स्पर्शन है, अतीत काल में जो क्षेत्र था उनका, उसकी अपेक्षा से यहाँ बात चल रही थी। तो उसको समझाते समझाते कहाँ कितने चंद्र और सूर्य है उसकी बात निकली थी। तो उसमें पहले बता दिया कि जो ढाई द्वीप है उसमें चंद्रों की, जब एक चंद्र कहते तो एक चंद्र उतने ही सूर्य होते हैं, जितने चंद्र हैं उतने ही सूर्य होते हैं, और फिर नक्षत्र और तारा, और क्या होता है, सूर्य चंद्र ग्रह, हाँ ग्रह नक्षत्र और तारे। तो ये तारों की संख्या हमने देखी थी, कितनी थी, 66,975 कोड़ा कोड़ी, एक चंद्र के परिवार में इतने होते हैं, यानी एक चंद्र के परिवार में एक सूर्य होता है, 88 ग्रह होते हैं और 28 नक्षत्र होते हैं, और तारे होते हैं 66,975 कोड़ा कोड़ी। अभी हम देखेंगे कि जो पहले पांच जो है ना, यानी ढाई द्वीप, तो उसमें जम्बू द्वीप के दो है चंद्र, कौन से तारे, हाँ एक चंद्र के है, दो चंद्र है तो उसके दो हो गए, हाँ जितने चंद्र है उसको इन सबसे गुणा करो, यानी जितने चंद्र है उतने ही सूर्य है, यानी उतनी संख्या, फिर 88 गुणा करेंगे तो ग्रह आएंगे, 28 से गुणा करेंगे तो नक्षत्र आएंगे, और 66,975 कोड़ा कोड़े से गुणा करेंगे तो उतने उसके तारे, यानी एक चंद्र का इतना परिवार है, तो जितने चंद्र होंगे उससे उसको गुणा करना पड़ेगा। इसी से ये जो कल हमने सब गणितें देखी थी ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन था, क्यों इससे गुणा करना, क्या करना, उसकी बात थोड़ा हम देखते हैं। तो पहले उन्होंने बता दिया कि देखो 150 पृष्ठ पर नीचे, 150 पृष्ठ नीचे के जो चार लाइन है उसमें क्या लिखा है, जम्बू द्वीप में दो चंद्र और दो सूर्य। ये ढाई द्वीप तक तो अलग प्रोपोर्शन है, बाकी आगे, हाँ आगे तो वो किस तरह से वृद्धि होती है उसको बताएंगे। तो जम्बू द्वीप में दो चंद्र और दो सूर्य हैं, लवण समुद्र में चार चंद्र और चार सूर्य हैं, धातकी खंड में पृथक पृथक 12 चंद्र और 12 सूर्य हैं, कालोदक समुद्र में 42 चंद्र और 42 सूर्य है। जब चंद्र कहते तो समझ लेना उतने ही सूर्य है, वो अलग से नहीं बताएंगे तो भी हम समझेंगे। देखो 2, 4, 12, 42 और पुष्कर द्वीपार्ध, यानी आधा द्वीप, आधे द्वीप में 72 चंद्र और 72 सूर्य है। अब पुष्कर की आधी बात की, यानी यहाँ तक तो ये हिसाब नहीं कहेंगे, मानुषोत्तर के आगे और स्वयंभू रमण तक, वहां तक ही ज्योतिषी विमान है, उसके आगे जो भूमि है वहां कोई विमान ज्योतिषी है ही नहीं है। तो वहां तक का अपने को कितने कितने हैं उसकी संख्या निकालनी है। देखो ढाई द्वीप तक तो कितने हैं चंद्र और सूर्य, वो डायरेक्ट एक एक द्वीप का और समुद्र का बताते हैं। जम्बू द्वीप के दो चंद्र और उतने सूर्य, अभी हम हर बार सूर्य का नाम नहीं लेंगे। फिर लवण समुद्र में 4, धातकी खंड में 12, कालोदक समुद्र में 42 और पुष्कर अर्ध आधा पुष्कर और उसमें 72 है। अब यहाँ से आगे गिनती शुरू होगी। हाँ जो ढाई द्वीप नहीं, राजू तक ढाई द्वीप तक तो अभी संख्या बताई और लवण समुद्र तक मैंने कहा था। ज्योतिषी विमान जो है वो लवण समुद्र तक ही है, उसके आगे नहीं है। लवण नहीं, मुझे स्वयंभू रमण से कहें। फिर से दोबारा सुनो, मुझे मन में एक बात है और कहती हूँ मैं लवण समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र मुझे कहना था। फिर से सुनो, एक राजू जो है मध्यवर्ती मध्यलोक, एक राजू वाला है तो उसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र है, बीचों बीच जम्बू द्वीप है। तो ढाई द्वीप तक के जो चंद्रों की संख्या है वो उन्होंने अलग से बताई है, मानुषोत्तर पर्वत के आगे और स्वयंभू रमण समुद्र तक चंद्रों की संख्या भी बताएंगे। तो पहले ढाई द्वीप तक तो उन्होंने बता दिया अलग से, जम्बू द्वीप के 2, लवण समुद्र के 4, फिर धातकी खंड के 12, कालोदक समुद्र के 42 और आधे पुष्कर के 72। अब मनुष्यत्तर पर्व के आगे ने आधे पुष्कर अभी बाकी है, यहाँ आधा पुष्कर, तो ये आधे पुष्कर में 8 वलय है। पूरा पुष्कर तो 16 लाख योजन का है, हमने देखा दुगुना दुगुना है, जम्बू द्वीप 1 लाख तो लवण समुद्र 2 लाख, फिर वो धातकी खंड है 4 लाख, कालोदक समुद्र है वो 8 लाख और आगे का 16 लाख। 16 लाख में से 8 लाख तो हमने पहले गिन दिया, तो अभी यहाँ 50,000 योजन जाके एक 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 वलय है। तो वलय ने वो एक एक वलय में कितने चंद्र है उसकी बात करेंगे। अभी जैसे हम शनि के वलय देख रहे हैं, शनि के वलय मान लो ना, इसे वलय ने राउंड, उसका वलय ने कंक कड़, हाँ गोलाकार, उसको वलय कहते हैं ना। जैसे ये आधा, देखो ये द्वीप तो ऐसा होगा पूरा, तो उसको ऐसा, ये पूरा ही इसको हम वलय कहेंगे, वलय आकृति। नहीं नहीं ऐसा कुछ वलय नहीं, वलय नहीं, उसका शेप बताने के लिए वलय का, वलय वलय तो उसका राउंड है, ये बताने के लिए वलय का उसको। तो आधे पुष्कर में 8 वलय हैं, बराबर, बाहरी आधे, आउटर हाफ, पुष्करार्ध का आउटर हाफ है मानुषोत्तर के आगे, 8 वलय है पुष्करार्ध में। उस वलय में चंद्र कितने हैं, तो पहले वलय में उन्होंने बताया था 144 है और आगे के वलयों में 4-4 से अधिक है, 8 वलयों तक। ये जो हमने कल 151 पृष्ठ पर पढ़ा है वो क्या है, आधे पुष्कर के जो 8 वलय है उसमें चंद्रों की संख्या पहले वलय में 144, दूसरे में 148, तीसरे में 152, 4-4 से बढ़ती हुई है। तो पूरे में कितने हैं, कहाँ 7 वाले लिखा है, क्या लिखा है, देखो 7 वाले कहाँ है तीसरे, हाँ तो उसके पहले पहली लाइन में क्या लिखा है विशेषण, जरा आप पढ़ना। नहीं नहीं आप पढ़ना, मैं समझाती हूँ ना, यहाँ शुरू से पढ़ना। हाँ पुष्कर द्वीप से 50,000 योजन आगे जाकर, हाँ ये पहले यानी पहली पहला वलय कहाँ है, 50,000 योजन पर, मानुषोत्तर के आगे 50,000 योजन पर पहला वलय है। अभी 8 में से पहला वलय हो गया, अब कितने रहे वलय, अभी 7 रहे। वो 7 वलय कितने कितने दूरी पर है, 1,00,000 योजन के दूरी पर है, ख्याल है? हाँ 50,000, 8,00,000 में से 50,000 पर पहला, फिर 1,00,000 योजन के दूरी पर और 7 है, ये तो समझ में है। हाँ अभी उसमें कितने हैं चंद्र, तो पहले वलय पर हमने देखा था 144, दूसरे वलय में 4 अधिक है, तो उसकी सबकी टोटल करनी है। तो ये हमने बाद में उसका निकाला था प्रमाण कि प्रति वलय 4 की वृद्धि है, है ना? तो उसका हमने वो चैधन वगैरह निकाल के आगे उसका प्रमाण निकाला था। इस प्रकार के वलय स्वयंभू रमण समुद्र तक अवस्थित है। हाँ नहीं नहीं 1,00,000 पर 1-1 वलय है, पहला ही वलय, पहला वलय 50,000 पर है। अभी हमने यहाँ तक हमने पुष्कर अर्थ की पूरी विड़थ कितनी है, पुष्कर की पूरी विड़थ, पुष्कर की अर्ध की नहीं 16, उसके आगे समुद्र है, समुद्र कितने लाख योजन का है, 32,00,000 योजन है, उसमें 32 वलय हो गए, 1,00,000 पर 1-1 वलय है। तो हमने देखा था जम्बू द्वीप से हम जो द्वीप समुद्र देखेंगे तो हम जितनी उसकी विड्थ होगी उसने उसमें वलय हो गए, 1,00,000 योजन पर 1-1 वलय। उन्होंने कहा ना ये जो 50,000 वाला तो पुष्कर अर्थ के आगे हमने शुरू किया, देखो यहाँ बात क्या हो रही, पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर ज्योतिषी विमान है, स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम समुद्र है, उसके आगे कोई ज्योतिषी विमान नहीं है, आगे भूमि तो है परंतु ज्योतिषी विमान नहीं है, ये बात। अब उनकी संख्या निकालनी है, तो पहले ढाई द्वीप तक तो उन्होंने संख्या बताई, जम्बू द्वीप के 2 चंद्र, लवण समुद्र के 4 चंद्र, फिर आगे धातकी खंड के 12 चंद्र, आगे कालोदिक समुद्र के 42 चंद्र, और आधा पुष्कर अंदर वाला, हाँ तो उसके 72 अंदर वाला 72। अब हमारा हिसाब चलेगा मानुषोत्तर पर्वत से आगे स्वयंभू रमण समुद्र तक। तो यहाँ कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत के आगे 50,000 योजन जाकर पहला वलय आता है। अब पुष्करार्ध जो आउटर हाफ है उसमें पूरा मिलकर 16,00,000 का था, पुष्कर द्वीप 16,00,000 का था, उसका आधा ढाई द्वीप में हमने गिन लिया, आउटर हाफ में अभी 8,00,000 योजन जो है उसमें से पहला वलय 50,000 योजन पर और रिमेनिंग 7 वलय है 1,00,000 योजन की दूरी पर। ये 1,00,000 के वलय अंत के समुद्र तक चले जाएंगे। तो हर द्वीप और समुद्र में कितने, तो पूरा ही पुष्कर हमने देखा था, पूरा पुष्कर जो द्वीप है वो 16,00,000 का है। अब उसके आगे का समुद्र यानी समुद्र नंबर 3, पहला समुद्र लवण, दूसरा समुद्र है कालोदधि और तीसरा समुद्र, तो ये तीसरे समुद्र की विड्थ कितनी है, तो 32,00,000, तो उसमें 32 वलय आएंगे। अभी तीसरे समुद्र के बाद चौथा द्वीप आएगा, पुष्कर द्वीप के बाद वाला द्वीप, तो समुद्र से दुगुना होगा तो उसमें 64 वलय हो गए, 64,00,000 योजन है तो 64 वलय हो गए। उसके आगे का जो समुद्र है वो 128,00,000 योजन का और उतने ही उसमें वलय हो गए। इस तरह से अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र तक यही चलेगा, इतने इतने वलय हो गए। और क्या है जो अभी हमने देखा था पुष्कर अर्ध के बाद मानुषोत्तर के बाद जो प्रथम वलय है उसमें 144 चंद्र है। और आगे के प्रत्येक वलय पर चार चार से वृद्धि होगी, प्रत्येक वलय पर, अंत के स्वयंभू रमण समुद्र तक प्रति वलय चार की वृद्धि। तो हम एक एक द्वीप और समुद्र का प्रमाण निकालेंगे। अभी यहाँ है 32, तीसरे समुद्र में है 32 वलय है। तो ये जो हमने पुष्करार्थ के बाद पहले वलय पर प्रमाण 144 देखा था, है ना? अब जो तीसरे समुद्र में 32 लाख में जो 32 वलय है, उसके पहले वलय का प्रमाण है इससे दुगुना, यानी 288। और प्रति वलय चार चार की वृद्धि होती जाएगी। अब जो आगे वाला समुद्र, अभी यहाँ समुद्र है ना, ये तीसरा समुद्र है। अब ये यहाँ जो द्वीप होगा 64 लाख योजन वाला, उसका जो प्रथम वलय है उसके चंद्रों की संख्या इससे दुगुनी हो जाती, तो ये 576 होगा ना, हाँ 576 हो जाएगी। अभी जहाँ 128 वलय है, 128 लाख योजन वाला है, उसका जो प्रथम वलय है वो प्रथम वलय में इससे दुगुना 1100 जो कुछ है 52, पहले वलय के चंद्रों की संख्या। तो प्रत्येक द्वीप में कितने कितने हैं चंद्र, उसकी टोटल हमको निकालनी है। ये हमने कल सब गणित देखे थे, परंतु वो क्यों किया, क्या किया, वो समझ में नहीं आ रहा था, है ना? मेरे भी नहीं समझ में आ रहा था। तो ये हम फिर दोबारा देखेंगे। देखो, ये समझ में आया ना, पुष्करार्ध के आगे आधे आधे पुष्कर पहला हाँ, क्योंकि उसके बीच में कितने आते हैं स्टार्टिंग, अभी जितने 32 लाख हैं, तो 50,000 योजन पर जाके उसका पहला वलय आता है, और अंत से भी 50,000 योजन अंदर अंतिम वलय आता है। तो उसमें पूरे 32 लाख वाला जो भूमि है, तो उसमें 32 वलय आ जाते हैं। चार चार से वृद्धि होती है, तो वृद्धि पहली वृद्धि कितनी बार हो गई, पहली अगर हम मापेंगे तो 31 बार पहले में वृद्धि हो जाएगी, है ना? तो देखो, हम उसी को हम आगे पढ़ेंगे, वो गणित कैसा निकालना है वो आगे बात, वो कल हमने देखा भी है, यहाँ दोबारा देखने वाले। अभी हमने क्या, तीसरे समुद्र से आगे हम चलेंगे, तो तीसरे समुद्र में, ये तो मैं अपनी बुद्धि से बता रही हूँ, 151 पृष्ठ पर है अभी हम। तीसरे समुद्र, ये पुष्कर की बात की हमने, कि पुष्कर के पहले वलय में 144, आगे आगे चार चार से वृद्धि, बराबर? तो वृद्धि कितनी बार हो जाएगी, 7 बार, 7 बार वृद्धि हो जाएगी, चार 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 करके 7 बार वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ कहते तीसरे समुद्र से अभी हम गिनेंगे, तो तीसरे समुद्र में 32 वलय है, और पहले वलय में पुष्कर के पहले वलय से दुगुना, यानी 144 से दुगुना 288 चंद्र होंगे। 32 लाख वाला जहां समुद्र है, उसके पहले वलय में, पुष्करार्ध के पहले वलय में संख्या चंद्रों की 144 थी, हरेक आगे के द्वीप और समुद्र में वो संख्या दुगुनी हो जाएगी पहले वलय में। हरेक समुद्र या हरेक द्वीप का जो पहला वलय है, उसमें संख्या पहले पहले वलय की संख्या देखेंगे तो दुगुनी 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 होती है, इसी क्रम से आगे बढ़ेगा। चार से ही वृद्धि होते होते उसका प्रमाण डबल हो जाता है, चार से वृद्धि होते होते ही उसका प्रमाण डबल हो जाता है। देखो, इसी 151 पृष्ठ पर देखो, आउटर पुष्करार्ध में 144 से शुरुआत हुई थी, बराबर, और चार चार से वृद्धि हुई, तो यहाँ संख्या लिखिए 148, 152, 156, 160, 164, 168, 172, ये अंतिम हुआ 172। अभी आगे समुद्र, तीसरे समुद्र का पहला वलय आने वाला है, तो वहाँ नीचे के लिखें, इसके आगे के समुद्र की भीतरी पंक्ति में 228 चंद्रमा इतने ही सूर्य होते, वो कितने ही समाप्त क्यों ना हो, पहले वाले में उससे डबल हो जाते, ये समझना है। हाँ, और भीतर वाला, भीतर एक समुद्र और दूसरे समुद्र के द्वीप के भीतर जो कुछ गैप रहेगा वे भले रहे, परंतु प्रथम वलय टू प्रथम वलय दुगुना हो जाता है। और फिर हाँ, और फिर अंदर अंदर जो है उसके, अभी यहाँ 32 वलय है, तो उस 32 वलयों में चार चार की वृद्धि, ख्याल है? तो 32 वलय में चार चार से वृद्धि होगी। फिर अगला वाला जो द्वीप है 64 लाख वाला, उसमें 64 वलय है, तो 32 वाले वलय में पहला वलय में तो 288 थे और वहाँ 576 हो जाएंगे। फिर इसकी टोटल उसको कैसा गिनना, वो आगे की गणित हमने कल देखा था, फिर दोबारा उसको देखेंगे। हाँ, ये तीसरे से ये आगे ऐसा ही इस वृद्धि, क्योंकि पहले में तो 8 ही वलय थे ना, आधा पुष्कर लिया था, पूरा पुष्कर तो 16 का हो जाता, परंतु यहाँ 32 वाला उसको प्रथम स्थान दिया हमने, तीसरे समुद्र को अभी हम पहला नंबर देंगे और वहां से अभी इसी प्रपोर्शन से आगे बढ़ेंगे। यानी तीसरे समुद्र को हमने पहला नंबर दिया तो उसमें 32 वलय है और पहले वलय की संख्या 288 है चंद्रों की, बराबर। अब यहाँ आगे ये गणित हमको समझाएंगे, अभी हम 153 पृष्ठ पर आए। देखो फिर दोबारा पढ़ेंगे, उसमें कोई समय जल्दी नहीं है, जो हमने कल पढ़ा था उसको फिर दोबारा पढ़ेंगे। पहली लाइन से देखो, अब विमानों की संख्या निकालनी हमको टोटल, यानी हम चंद्रों की संख्या निकालेंगे पहले में, पहले विमानों की संख्या तो बाद में निकालेंगे, परिवार की जो संख्या है उससे गुणा करेंगे बाद में। तो कहते तृतीय समुद्र में, अभी तीसरे समुद्र से शुरू होगा, वहां 32 वलय कैसे निकलते वो हमने देखा, तो उसी को उसको गच्छ कहेंगे। अभी उतनी बार चार चार बढ़ेंगे ना, तो गच्छ 32 हमारा, तो तृतीय समुद्र में गच्छ का प्रमाण 32। चतुर्थ द्वीप का नंबर है अभी, तो चतुर्थ द्वीप में गच्छ का प्रमाण 64, इसको हम दूसरा स्थान देंगे। फिर आगे का समुद्र यानी चौथा समुद्र होगा वो, जिसको हम तीसरा नंबर देंगे, गच्छ का प्रमाण 128, तो उत्तरोत्तर दूना दूना होता है। अब इसका अर्थ हम ख्याल में आ गए हम, है ना, क्योंकि वो उतने उतने लाख वाले हैं, तो उसके वलय भी उतने हैं, तो उसमें उतने हम गच्छ करेंगे, गच्छ क्योंकि हमको वृद्धि का प्रमाण निकालना है, इसलिए उतने गच्छ हो गए उसमें। देखो इस प्रकार उत्तरोत्तर दूने दूने क्रम से गच्छ स्वयंभू रमण समुद्र तक बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब इन गच्छों से पृथक पृथक गुण्यमान यानी गुणा की जाने वाली राशियों की प्ररूपणा करते हैं। तृतीय समुद्र में यानी जो जहाँ 32 गच्छ था उसकी गुण्यमान राशि अभी क्या है, उन्होंने ये सारी बातें यहाँ समझाई नहीं है। तो 32 बार वृद्धि हुई या 31 बार वृद्धि हुई जो कुछ है, यानी 32 तो वलय है और पहले वलय में 288 है, तो बिना वृद्धि का अगर हम 288 ही 32 बार लेते हैं तो उसको हम आदि धन कहेंगे, और जितनी जितनी वृद्धि है उसको बाद में टोटल करके मिलाएंगे सबकी, ख्याल है? तो 32 को हम 288 से गुणा करेंगे, जिस समुद्र में 32 गच्छ है उसको हमने 288 से गुणा किया, तो इसको हम आदि धन कहेंगे। यहाँ उसका नाम दिया नहीं है, पर इन सब आदियों की टोटल वो आदि धन। अब इसमें जितना जितना उच्चय मिलाएगा चार चार का, तो उसको हम चयों की टोटल, उसको चय धन या उत्तर धन कहेंगे। तो आदि धन और उत्तर धन मिलकर 32 वलयों में मिलकर चंद्रों की संख्या हमको मिल जाएगी, तो इसका आदि धन ये हुआ। अब जहां पर 64 वलय है, तो 64 वलयों के पहले वलय की संख्या कितनी अभी हमने देखी थी, 576। अब इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ तो दुगुना हुआ है, 32 के बदले 64 हुआ और 288 के बदले यहाँ 576 हुआ, तो 288 ही गुण्यमान राशि रखने के लिए उन्होंने यहाँ 288 को दो गुना किया, और ये जो दो है वो इसी में गुणा कर दिया, यानी गच्छ चौगुना चौगुना हुआ और गुण्यमान राशि उतनी रखी। ये कल हमने पढ़ा भी था, देखो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अभी हम यहाँ पहले द्वीप और समुद्र लिखेंगे, 32 से हमने शुरू किया है। तीसरा समुद्र है ना, अपनी पहली फिगर 3 4, तो क्या होगा, 32 है, उसके आगे 64 वलय वाला यानी 64 गच्छ वाला होगा, उसके आगे 128 होगा और उसके आगे 256 होगा, और इसके प्रत्येक के प्रथम वलय की कितनी कितनी राशि होगी चंद्रों की, तो 288, फिर 288 गुणा 2, 288 गुणा 4, 288 गुणा 8, बराबर। तो 288 अगर कॉमन रखते हैं तो ये जो गुण्य और आगे वाली फिगर हो उस यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो ये 64 के बदले 64 गुणा 2 128 हो जाएगी, यानी जो गच्छ है वो चौगुना चौगुना हो जाएगा, गच्छ भी दुगुना हो रहा है और पहले वाले की संख्या भी दोगुना हो रहा है, तो हम इसको फिक्स रखेंगे तो ये 4 4 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ 32 और 288 दोनों को अगर फिक्स रहेंगे तो उसको 4 गुना किया, उसके आगे 4 गुना, यानी टोटल फिगर भी 4 4 गुना हो जाएगी। यहाँ जो आदि धन है पहले समुद्र का, यानी पहले तीसरे वाले का पहले नंबर पर जो आदि धन होगा उससे आगे वाला आदि धन 4 गुना होगा, यानी 32 गुना 288 का जो संख्या आएगी वो 4 4 गुना प्रत्येक द्वीप समुद्र पर होती जाएगी। इतना ख्याल है, अभी हम आगे देखेंगे इसी को। देखो इसको हम फिर पढ़ेंगे पहले से, देखो उत्तरोत्तर दुगुना हो जाता है। अभी नीचे से तीसरी लाइन पहले पैराग्राफ में, तृतीय समुद्र में गुण्यमान राशि 288 मिला, उससे उपरिम द्वीप में, पहले पैराग्राफ नीचे से दूसरी लाइन पढ़ रही, गुण्यमान राशि दूनी यानी 288 गुणा 2 576 है। इस प्रकार दूने दूने क्रम से गुण्यमान राशियां स्वयंभू रमण समुद्र प्राप्त होने तक दूनी होती चली जाती है। ये गुण्यमान राशि यानी पहले वलय की राशि, ऐसा समझो ना, क्यों गुणा किया, क्योंकि हमें हरेक में आदि धन निकालना है, एक वलय में इतने तो सभी वलयों में कितने, ये तो बेसिक मिलेगा, और फिर जो वृद्धि है उसकी टोटल हम उत्तर धन में निकालेंगे। तो यहाँ का जो पहले नंबर पर जो है गुणकार इन सब का, उससे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा, क्योंकि गच्छ भी दुगुना हो रहा है और गुण्यमान राशि भी 2 गुना हो रही है, तो उनकी जो टोटल गुणकार, जो टोटल जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो 4 4 गुना बढ़ते हुए चला जाएगा अंतिम समुद्र तक, तीसरे समुद्र से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र तक, ये जिसको हम आदि धन कहते हैं वो 4 4 गुना होता जा रहा है। ये बात ख्याल में आई। अब आगे यही बात उन्होंने आगे लिखी, देखो बीच वाला जो पैराग्राफ है उसमें, अब 288 से सभी गुण्यमान राशियों को अपवर्तित कर लब्ध राशि से अपने अपने गच्छों को गुणित करके, यही हमने देखा यहाँ 576 के बदले 288 गुणा 2 आए, इस 2 से गच्छ को गुणा किया, यानी गच्छ 64 के बदले 128 कर दिया हमने, गच्छ ही 4 4 गुणा कर दिया और 288 फाइनल वैसे ही रखी राशि। तो वो बताने के लिए उन्होंने लिखा है कि ऐसा करने पर सर्व गच्छ परस्पर की अपेक्षा से चतुर्गुण क्रम से अवस्थित हो जाते, यानी गच्छ भी चौगुने चौगुने हो गए और 288 फिक्स एक ही संख्या रहेगी। गणित फाइनल टोटल निकालने के लिए, इजी करने के लिए ये सब बता रहे। अब ये उदाहरण के नीचे देखो, अब वृद्धि की बात करेंगे। अब 4 को आदि करके 4 4 के उत्तर क्रम से जो संकलन धन प्राप्त होता है उसके निकालने पर पहले के गच्छों से इस समय के गच्छ 1 कम होते हैं। देखो जहां 32 वाले हैं वहां पहले में 288 है और आगे 4 4 की वृद्धि, उसका उसके आगे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो कुछ राशि आई वहां तक उस समुद्र या द्वीप तक लिमिटेड है, क्योंकि अगले वाले समुद्र में पहला है जो संख्या वो इससे डबल से शुरू हो जाती है और उसके आगे चार चार की वृद्धि है। पहले समुद्र के अंत से दूसरे समय के द्वीप के पहले में चार की वृद्धि का वो प्रोपोर्शन नहीं है, वो एक या द्वीप समुद्र तक ही लिमिटेड है, इसलिए चार चार की वृद्धि यानी हर एक समुद्र के लिए जो अपना अपना उत्तर धन है वो हम अलग अलग निकालेंगे। तो तीसरे समुद्र के लिए 32 वलय है, पहले वलय में 288 संख्या है, तो वृद्धि कितनी बार होगी? 31 बार हो जाएगी, 32 है ना गच्छ, तो 31 बार वृद्धि होगी, तो 31 बार चार चार से वृद्धि होती है, तो टोटल वृद्धि कितनी होगी? तो हम मध्यम धन निकालेंगे, 31 बार वृद्धि होती है और एवरेज वृद्धि कितनी हुई उसका प्रमाण निकालेंगे, यानी 31 हुआ ना, तो नीचे 15 छोड़ो ऊपर 15 छोड़ो और बीच वाले 16वें स्थान पर वृद्धि का कितना प्रमाण होगा, तो 16 चौक 64, ये हमने उन्होंने टेबल निकाल के यहाँ बताया था, देखो 154 पृष्ठ पर बताया, 16वें स्थान पर 64 की वृद्धि है, बराबर, ये मध्यम धन यानी वो चय धन का मध्यम धन आया, उत्तर धन का मध्यम धन, क्योंकि अभी हम वृद्धियों की टोटल करने जा रहे हैं, तो उसमें एवरेज वृद्धि कितनी है? 64, पहले से दूसरे वाले में 4 बढ़े, तीसरे में 8 बढ़े, चौथे में 12 बढ़े, चार चार एक्स्ट्रा बढ़े, यानी पहले 4 प्लस दूसरे में 8 प्लस तीसरे में, इस सब की टोटल करनी पड़ेगी हमको, खाली 31 गुना 4 से काम नहीं चलेगा, टोटल वृद्धि गिननी है ना, देखो अभी हम टोटल वृद्धि गिननी जा रहे हैं, तो पहले में 4 बढ़े, दूसरे में 4 और बढ़े यानी 8 बढ़े टोटल, तीसरे में 4 4 4 बढ़े, अब इन सब की टोटल करनी हमको, तो 16वें स्थान पर कितने बढ़े थे, तो ऐसे 16 बार 4 4 बढ़े थे यानी 64 बढ़े थे, तो 64 हमारा एवरेज हुआ, तो 31 बार वृद्धि है उसको हम 64 से गुणा करेंगे, ये यहाँ है देखो, ये नीचे मध्यम धन 64 है, उदाहरण नीचे लिखा है उसमें, 31 बार होगी वृद्धि, तो 31 गुणा 64, पहले 64 बाय 64 किया फिर 31 और 64, तो ये कुल वृद्धि का प्रमाण है, उत्तर धन जिसको कहते हैं, टोटल वृद्धि। इस उत्तर धन को अभी हमने आदि धन निकाला था 32 बार, 288 था ही, और ये तो एक्स्ट्रा बात है जो 31 बार मिलकर हुई थी, तो पहले जो 232 गुना 288 इसको कहते हैं आदि धन, यानी सभी आदियों की टोटल, बेसिक की टोटल, और उसमें मिलाना है उत्तर धन, उत्तर धन कहो या चय धन कहो, यानी टोटल वृद्धि, तो सब मिलकर हो जाएगा सर्वधन, इसको सर्वधन यानी टोटल कहते हैं, आदि धन प्लस उत्तर धन इज इक्वल टू सर्वधन। अभी 32 वलय वाला जो समुद्र है उसमें आदि धन 32 गुना 288 था, और उत्तर धन में हमने देखा था 64 एवरेज वृद्धि और 31 बार वृद्धि हुई, तो 31 गुना 64 उसका प्रमाण 1984 आता है, तो 288 गुना 32 9216 यानी 9216 थे, और ये उत्तर धन जिसको कहते हैं 1984, दोनों मिलकर सर्वधन 11200 आया। ये पहले पॉइंट पर जो तीसरा समुद्र है उसका टोटल चंद्रों का प्रमाण 11200 आया, ये एक समुद्र की बात हो गई, यहां तक समझे? ये चंद्र की संख्या, अभी इसको फिर इस चंद्रों की संख्या को वो 66975 कोड़ा कोड़ी और अंत में वो तो 118 और आगे रख देना वो उसके जो कुछ है वो 88 यानी एक सूर्य 88 ग्रह 28 नक्षत्र इनकी टोटल भी उसमें ऐड कर देना 66975 कोड़ा कोड़ी में और इतने चंद्रों को उससे गुणा करना तो पूरे परिवार हो जाएंगे। एक समुद्र संबंधी ये कौन सा तीसरे समुद्र संबंधी पूरे ज्योतिषी विमान आ गए चंद्रों का परिवार।
ये विमानों की संख्या
है। हाँ ये विमानों की संख्या हम निकाल रहे। ये तो 32 वाले की बात आई अभी 64 वाले की निकालेंगे। प्लस में अभी अब जो हमने उत्तर धन निकाला था कितना निकाला था
1983
कैसा निकला क्यों किया ऐसा 31 × 64 क्यों किया 31 × 64 क्यों किया था। हाँ 31 बार वृद्धि हुई और एवरेज वृद्धि 64 थी हर बार 4 की वृद्धि है तो 31 बार वृद्धि होनी है तो 31 का मध्य पॉइंट है 16वां तो 16वें बार कितनी वृद्धि होगी तो 64 तो 64 अपनी एवरेज वृद्धि है इसलिए 31 × 64 किया तो 1984 आ गया। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है ये तो समझना ना अभी स्लेट तो छोटी है हम तो पूरा नहीं लिखेंगे यहाँ लिखना पूरा सब नहीं तो पुस्तक का पुस्तक में ही रह जाता है। समझना पहले क्योंकि ये फिगर्स इम्पोर्टेंट नहीं है क्यों और कैसे किया ये महत्व की बात है क्योंकि ये फिगर्स हम भूल जाने वाले हैं कल क्या हमने देखा था वो आज नहीं अपने ये तो हम कल की बात सब पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ कल नहीं समझाता अभी हम सब समझ रहे हैं अभी। हाँ ये विमानों की संख्या निकाल रहे हैं कौन से तीसरे समुद्र के चंद्र का परिवार अभी 11200 तो अकेले चंद्र है 11200 सूर्य भी हो गए मैंने पहले बताया ना उसमें वो पहले वाली संख्या से गुणा कर देना है तब पूरे ज्योतिषियों के विमानों की संख्या निकलेगी। हाँ वो अलग होगी फिर उनके अपने अपने उससे जो है वो हाइट वगैरह उगाना उससे गुणा करेंगे वो सब बातें आगे बताएंगे। इसलिए मैक्सिमम संख्या ज्योतिषियों की है मैक्सिमम संख्या ज्योतिषियों की है हमने पहले देखा था अलग अलग है विमानों के जो साइज भी अलग अलग होगी। अब यहाँ जम्बू द्वीप के जो विमान छोटे होंगे आगे के विमान बड़े होंगे। हाँ उनके जो पृथ्वी का एक होते हैं ना वो विमान जैसे टुकड़े टुकड़े जैसे हम जैसे जिस तरह ग्रह कहते हैं ऐसे पृथ्वी आइलैंड पृथ्वी का आइलैंड कहते हैं। अभी ये दूसरे पॉइंट पर यानी जो पहला अभी हमने 32 लाख वाला देखा अब 64 लाख वाला देखेंगे। हमने देखा था 64 लाख का गच्छ 4 गुना किया था याद होगा तो आपको पहले हमने 288 को कॉमन रखने के लिए वो 4-4 गुना किया था गच्छ इसलिए आगे के समुद्र 128 का गच्छ लिया और उसको 64 से भाग दिया यहां भी ऐसा ही लेना है। अभी जो पहले वो 288 है ना उसको अभी भूल जाओ अभी हमको ये आदि धन के लिए हमने 288 का प्रमाण निकाला था आदि धन यानी बेसिक जो हम निकाले थे तो उसमें गच्छ को भी 4 गुणा किया और 288 को कॉमन रखा फिक्स रखा। अभी वैसे ही हर समुद्र और हर द्वीप में हम उत्तर धन निकालेंगे जिसको क्षय धन कहेंगे वृद्धि का टोटल प्रमाण। तो 32 लाख वाले में हमको वृद्धि का प्रमाण निकालना है, तो 32 उसका गच्छ था और 64 एवरेज था, बराबर। उसके अगले 64 वाले वाला जो है, यानी इसको 31 बार हम 64 से गुणा करेंगे तो यहाँ का उत्तर धन यानी चय धन मिलेगा। उसके आगे 64 वाले वाला जो है उसकी वृद्धि 63 बार होगी और उसका यह एवरेज भी डबल होगा, तो 64 के बदले 128 एवरेज होगा। परंतु यहाँ भी वही फॉर्मूला लेना, हमको यह एवरेज फिक्स रखना है, तो एवरेज फिक्स रखना है तो इसको 64 करेंगे तो यहाँ हम 4 से गुणा करेंगे, 2 से बीच में गुणा करेंगे, तिरसठ गुणा 2 करेंगे, या इसको 64 को 128 कर देंगे, यहाँ 2 गुणा किया ना, ये 4 गुणा गच्छे के बदले, ये 2 गुणा गच्छे के बदले 4 गुणा हो गया, क्योंकि हमको 64 फिक्स रखना है। 64 जो एवरेज वृद्धि है उसका प्रमाण फिक्स रखने के लिए हमने गच्छ को ही दुगुना कर दिया। वैसे तो पर समुद्र और द्वीप गच्छ दुगुना वैसे होता ही था, हमने उसको चौगुना कर दिया। देखो गच्छ भी दुगुना होता था और एवरेज वृद्धि भी दुगुना होती थी, उसके बदले क्या किया हमने, गच्छ को ही 4 गुना कर दिया, बराबर। तो गच्छ को 4 गुना कर दिया हमने, तभी गच्छ को 4 गुना किए, इसके 4 गुना हो गए ना, ये तो यहाँ पर क्या करना है, 63 बार वृद्धि होनी है और इसको 4 गुना किया तो इसको 4 से भाग देना है, 4 गुना ही खाली करना है, पहले वाले से 4-4 गुना हुए बढ़ता गया है, इसलिए 4 गुना इसको 4 गुना करेंगे। देखो यहाँ दूसरे फिगर में तो ये जो 28 है, ये मध्यम धन, यहाँ का मध्यम धन 128 था और वो हमने 64 लेना है हमको, तो 64 से 2 गुना है, इसलिए ये तो ये वलय कितने हैं इसके, इसके लिए मैंने यहाँ 64 लिखे थे, तो यहाँ 64 लिखने हैं तो इसको 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 128 के बदले हम क्या करेंगे, 2 गुना 64 31, यहाँ 31 नहीं, यहाँ 63 गुना 2 गुना 64। अब जहाँ तीसरा समुद्र 128 है उसके 127 हो जाएगी, 127 बार वृद्धि। अब यहाँ 2 के बदले अभी यहाँ मूल में कितने होने वाले थे, 128 से डबल 256, तो 256 को 64 से भाग देना तो 4 आ गए, तो 127 को 4 गुना करेंगे और 64 कॉमन रखेंगे। या इसे फिक्स गुणाकार क्यों रखा है, क्योंकि ये तो सब जगह फिक्स है और ये दुगुना दुगुना होता जा रहा है, 2 गुना 4 गुना इस तरह से, ये ऐसा क्यों करना है, तो हमको इतने असंख्यात द्वीप समुद्रों की उत्तर धनों की भी टोटल करेंगे, सभी के आदि धनों की भी टोटल करेंगे, तो उसके लिए ये सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। तो देखो यह उदाहरण में दूसरा पॉइंट में यानी 155 पेज पर पहली लाइन तीसरे समुद्र की, उन्होंने एक नंबर दिया, तीसरे समुद्र के आगे वाला चौथा द्वीप है उसके लिए 2 नंबर दिया, जिसमें वलय है 64, बराबर। तो 64 के बदले 63 लिया बीच की संख्या, क्योंकि 63 बार वृद्धि है, वृद्धि यहाँ 128 हो गई है, एवरेज यहाँ का 128 है, परंतु हम तो उसको 64 ही रखते हैं, तो ये जो 2 गुना लिखा था तो 128 बाय 64 2 आते हैं, तो 2 गुना 63 गुना 64 ऐसा हो जाएगा, तो 8064 ये उत्तर धन आया, उत्तर धन है टोटल वृद्धि। जिस द्वीप में 64 वलय है वहाँ की टोटल वृद्धि 8064 आई, और वहाँ की जो बेसिक कितनी है तो 64 वलय है, 64 वलय है, और उसको हमने 288 गुणा करना है, तो वहाँ 64 वलयों को हमने उसका बेस पहले 2 गुना के बदले 4 गुना किया था, यानी 128 किया था ना, 32 के बदले 128 किया था, तो 128 गुना 288 किया था हमने, 288, यानी चौथे समुद्र का आदि धन कितना निकला, देखो पहले पेज पर हमने निकाला, जैसे 92 से 16 था तो उसके 4 गुना आ जाएगा, यहाँ उन्होंने आगे लिखा है मेरे ख्याल से, इसको 36864 यहीं पर लिखा है, हाँ यहीं पर लिखा है, ये कैसा निकला ख्याल है ना, 64 वलय थे, हाँ तो उसमें हमने 64 तो रखा और 288 को 2 गुना किया, 576 यानी 288 से 2 गुना, बराबर है ना, तो उसका उत्तर 36864 आया था आदि धन का, और अभी जो वृद्धि का जो उत्तर धन है उसमें मिला ना, तो यहाँ सर्वधन, सर्वधन अर्थात सभी चंद्रों की संख्या, कौन सा द्वीप चल रहा है, चौथा द्वीप चल रहा है, चौथे द्वीप के चंद्रों की संख्या 44928, खाली सर्वधन कह दिया तो सर्वधन से हम नहीं समझते, तो चंद्रों की संख्या है ये, परिवारों की नहीं, अकेले चंद्रों की, यानी ये किसकी संख्या है, चौथे द्वीप के चंद्रों की संख्या, यानी जो 64 लाख योजन वाला है, अब उसके आगे अभी चतुर्थ समुद्र जिसको 3 नंबर दिया है, तो वहां एवरेज 256 होने वाला है, 6 का एवरेज, 4 की वृद्धि है ना, तो 4 की वृद्धि कितने बार होगी, तो 128 बार होगी, वृद्धि 127 बार होगी, परंतु यहाँ वलय कितने हैं, 128 वलय हैं, तो उसमें जो एवरेज जो है 256 का है, पहले हमने 64 देखा था उसके बदले 256 यानी 4 गुना हो गया, तो 127 गुना 4 गुना 64, क्योंकि हमने पहले वाला ही एवरेज कायम रखा है, परंतु एवरेज 4 गुना हुआ है, तो ये पहले में जो लिखा है ना 256/64 उसके बदले में डायरेक्ट 64 गुना 4 लिखे तो भी चलेगा, तो 127 गुना 64 गुना 4, तो ये 32512 उत्तर धन आया, यानी टोटल वृद्धि आई। अब यहाँ तो 128 वलय है, बराबर, और 1152 यानी 288 गुना, वो तो हमने डबल डबल करते हैं ना, 8 गुना हुआ, कितने गुना हुआ, 2 गुना 4 गुना, 288 हाँ गुना 4, बराबर, और 32 गुना 4 यहाँ हो जाता है, 32 को 4 गुना किया 288 कायम रखा, पहले ऑलरेडी डबल डबल था ही, यानी 32 का 64 और 64 का 128 हुआ था, अभी यहाँ ये भी 4 गुना हुआ, तो टोटल वहां ले लिया उनको, तो ये उत्तर धन आया, और ये पहले वाला जो है वो आदि धन, आदि धन ने 288 बेसिक लेके हमने जो जितने को गुणा करना, 288 गुणा 4 यहाँ, और यहाँ वलय की संख्या है 128, तो उसको हमने गुणा किया, तो ये चतुर्थ समुद्र संबंधी समस्त चंद्रों का प्रमाण, ये पूरा आदि धन प्लस उत्तर धन इज इक्वल टू सर्वधन, अभी ये ख्याल में आया, कहते इसी क्रम से आगे के प्रत्येक द्वीप और समुद्र का स्वयंभू रमण समुद्र तक उत्तर धन एवं सर्वधन निकालते जाना चाहिए। अकेले उत्तरधन से काम नहीं चलेगा, आदिधन, उत्तरधन और सर्वधन सब निकलेंगे, बराबर। अब इस प्रकार से अवस्थित संकलनों के निकालने के प्रकार को कहते हैं। तो अभी हमने एक नंबर पर देखा 11,200 चंद्र है, दो नंबर पर यानी चौथे द्वीप में देखा 44,928 चंद्र है, तीन नंबर पर देखा 1,79,968 चंद्र है। अभी इसी क्रम से कितने कितने बढ़ेंगे स्वयंभू रमण समुद्र तक, अब इन सब की हमको टोटल करनी है। तो देखो आदिधन और आदिधन कितने से बढ़ रहा है, या सर्वधन और सर्वधन भी देखेंगे। हाँ, आदिधन तो 4 गुना होता ही है, 1984 नहीं, उत्तरधन अलग होता है, आदिधन तो 4-4 गुना होगा, बराबर है। पहले वाला का क्या, हाँ उसमें उतने ऐड करना। हाँ देखो पहला सर्वधन 11,200 है, उसको क्या किया हमने, 44,800 है, उसमें 128 मिला दिए। अच्छा 4 गुना प्लस 128 यानी पहले 256। हाँ अब इनकी टोटल निकालनी है, इन सब की टोटल निकालनी है स्वयंभू रमण समुद्र तक। तो वो कैसे निकालने हैं अब उसकी यहाँ प्रमाण वहां बताएंगे। अब कहते हैं ये सब बातें तीसरा समुद्र और आगे की बात है, पुष्करात को छोड़कर, क्योंकि इसी क्रम से आगे बढ़ रहे हैं ना, इसलिए 6 रूप अधिक जम्बूद्वीप के अर्धच्छेदों से परिहीन क्या करना है, जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद छोड़ो और आगे के पुष्कर तक के अर्धच्छेद छोड़ो, इसलिए 6 अर्धच्छेद प्लस जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद ऐसा कहा। जम्बूद्वीप 100,000 योजन है, उसके अर्धच्छेद करते जाओ, आधा किया आधा किया आधा किया आधा किया, वो पहले हमने तीसरे पुस्तक में देखा था 17 बार किया, फिर जो कुछ बचे सुचंगुल में निकालते निकालते गए तो उसके 19 और कुछ ऐसे अर्धच्छेद निकले। तो हम इतना ही कहेंगे कि जम्बूद्वीप के जितने अर्धच्छेद है उतने, और प्लस पुष्कर द्वीप तक के जितने अर्ध, तो उसके सब 6 अर्धच्छेद उन्होंने बताए, तो 6 अर्धच्छेद 6 प्लस जम्बूद्वीप के जितने हैं उतने, इनके अलावा इनको छोड़कर, इनको किस में से माइनस करना है, पूरे राजू के अर्धच्छेद में से। देखो फिर पढ़ते इसको, 6 रूप अधिक यानी 6 अधिक जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद, इनसे परिहीन यानी इनकी जो टोटल है जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद प्लस 6, ये जो टोटल हो जाएगी उसको माइनस करना, किस में से, राजू के अर्धच्छेद उसमें से माइनस करना। देखो राजू के जो पूरे टोटल अर्धच्छेद है उसमें हम पुष्कर द्वीप को छोड़ कर के बात आगे हम देखना है हमको, तो यहाँ जो असंख्या द्वीप समुद्र है उनके हमको अर्धच्छेद निकालने हैं। तो पूरे टोटल जो है राजू के अर्धच्छेद, राजू यानी पूरा ही एक राजू यहाँ से यहाँ तक, तो पहला अर्धच्छेद बीच में आएगा ना जम्बूद्वीप के सेंटर में, दूसरा अर्धच्छेद पहले समुद्र में आएगा स्वयंभू रमण समुद्र में, दूसरा अर्धच्छेद स्वयंभू रमण द्वीप में, तीसरा अर्धच्छेद अगले समुद्र में, चौथा अगले द्वीप में, एक एक समुद्र और एक एक द्वीप में एक एक अर्धच्छेद पड़ेगा। तो जितने असंख्या द्वीप समुद्र है उतने अर्धच्छेद हो जाएंगे। प्लस आपने 19 कहा था ना, ये 19 तो 17 प्लस ये 19, वो कुछ एक योजन के 19 अर्धच्छेद हो जाते हैं। पूरे राज्यों के अर्धच्छेद कितने हैं? जितने असंख्या द्वीप समुद्र है उतने हैं। और फिर अंतिम जो 1,00,000 बचा, उस 1,00,000 योजन के भी अर्धच्छेद करेंगे तो उसका हिसाब हमने तीसरे भाग में देखा था, दोबारा पढ़ना उसको, यहाँ भी रेफरेंस दिया उन्होंने। तो क्या कहते हैं, ये 6+ जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद, उसको पूरे राजू के अर्धच्छेद में से माइनस करना, और उसको अभी हम गच्छ कहेंगे जो असंख्यात में आएगा। असंख्यात में से हमने ये कुछ गिने चुने माइनस कर दिए, फिर वो असंख्यात में आएगा गच्छ, उसको गच्छ करना और संकलन राशि निकालना है। यानी इतने बार वो दुगुने या चौगुने जो कुछ प्रोपोर्शन है उतने हो गया कोई संख्या। अब हमने यहाँ 5 संख्या लिखी और वो 3 बार 4-4 गुना हो गए, तो 5 × 20 हुए, 20 × 80 हुए, 80 × 320 हुए। तो अभी इसकी टोटल हमको निकालनी है, तो 4-4 गुना हुई ना, तो उसका जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा हम उसकी संख्या निकालेंगे। और अकेले चौगुनी चौगुनी वो तो आदि वाली संख्या चौगुनी हो गई, और उत्तर धन भी उसके अपने प्रोपोर्शन में बढ़ गया है, तो इसलिए उसका गणित निकालेंगे। तो पहले गच्छ कितना है, एक राजू का जितना गच्छ है उसमें से ये कुछ माइनस करना है, 6+ जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद। यदि ऐसा करेंगे तो ज्योतिष का जीव राशि नहीं उत्पन्न होती है, ये कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर जगत प्रतर का 256 सूचंगुलों के वर्ग प्रमाण भागहार नहीं उत्पन्न होता है। ज्योतिष राशि निकालने के लिए, या तो विमानों की संख्या को ही ज्योतिष राशि कहा उन्होंने, तो वो निकालने के लिए यदि हम ये प्रमाण निकालते हैं राजू के अर्धच्छेदों का, तो कहते हैं ये जगत प्रतर डिवाइडेड बाय 256 सूचंगुल का वर्ग, ये राशि नहीं आती है। तो उसके लिए ये और तरीका बता रहे हैं, दूसरा कुछ। इसलिए राजू के अर्धच्छेदों में तत्प्रायोग्य यानी यथायोग्य अन्य भी संख्यात रूपों की हानि करके गच्छ स्थापित करना चाहिए। उनका ऐसा कहना है, ये हमने स्वयंभू रमण समुद्र से तो असंख्यात द्वीप समुद्रों की बात की, परंतु उसके आगे भी असंख्यात योजन भूमि है, इसलिए वहां कुछ उनके अर्धच्छेद पड़ेंगे, ऐसा कहते हैं। हाँ, तो वो भी उसमें से माइनस करेंगे। इनका प्रमाण संख्यात अर्धच्छेद है जो कुछ है, यानी यदि हम यहां तक ही अगर एक राजू की लिमिट मानते हैं स्वयंभू रमन समुद्र के आउटर बॉर्डर, तो अभी आपका जो प्रमाण उन्होंने बताया वैसा होगा, परंतु उसके आगे असंख्यात योजन भूमि है और उसमें संख्यात अर्धच्छेद यहां पर पड़ते हैं, और अगर उसको हम साथ में लेते हैं तो फिर वो 256 सूचंगुलों के वर्ग का जगत प्रतर को भाग दो, वो संख्या बराबर आती है। इस पर से उन्होंने बीएसएन आचार्य ने सिद्ध किया है, देखो इसकी बात भी आगे आएगी। 5वीं लाइन, इसलिए राजू के अर्धच्छेदों में तत्प्रायोग्य यानी यथायोग्य अन्य भी संख्यात रूपों की हानि करना चाहिए यानी कमी करना चाहिए, फिर गच्छ स्थापित करना चाहिए। हाँ, ये हमें ज्योतिष राशि ऐसे ही निकालते, ज्योतिष देव कितने हैं तो ये संख्या है, तो ये संख्या आनी चाहिए। तो अगर उसको राजू के अर्धच्छेदों को जो हमेशा मानते आए थे उसको अगर हम सही मानेंगे तो ये प्रूव नहीं होता है, इसलिए उससे भी ज्यादा है राजू के अर्धच्छेद, हम जो अभी बता रहे थे उससे कुछ ज्यादा है, संख्यात से ज्यादा है। इसलिए हमको अकेले द्वीप और, क्योंकि अभी हमारा प्रश्न क्या है, ज्योतिषी देव कहाँ तक है, एक राज्य तक नहीं, स्वयं ब्रह्म समुद्र तक, इसलिए राजू के जितने अर्धच्छेद है उसमें से बाहर वाले कुछ संख्या और अंदर वाले जम्बूद्वीप के प्लस 6, ये सब माइनस करने पड़ेंगे। तो जो कुछ यथा योग्य असंख्यात आएगा अभी हम उसको पकड़ेंगे। कितनी बार दूना हुआ है इसको इतना ही हमको निकालना है। अभी हमारा प्रयोजन राजू के अर्धच्छेद निकालना नहीं है, वो तो हमने तीसरे भाग में हमने निकाला था। अपना प्रयोजन क्या है, कितनी बार वो दुगुने दुगुने है तीसरे समुद्र से लेकर, कितनी बार दुगुना दुगुना हुआ है, तो असंख्यात बार। तो वो असंख्यात की संख्या कैसे निकालना वो उन्होंने बताई। तो हमारा गच्छ कितना होगा असंख्यात, जैसे अभी हमने देखा ना 3 बार 4-4 गुना हुआ, वैसे कितने बार 4-4 गुना होने वाला है, असंख्यात बार। क्योंकि ये हमको सबकी टोटल करनी है, सभी चंद्रों की टोटल निकालनी है। तो कहते देखो करके गच्छ स्थापित करना चाहिए, नीचे से तीसरी लाइन, ऐसा करने पर तृतीय समुद्र आदि नहीं होता ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। क्या कहते हैं, यदि हम ऐसा मानेंगे तो तीसरे समुद्र से बिगिनिंग नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। कोई ऐसा मानेंगे तो वो भी नहीं ठीक है। आदि यानी प्रथम, क्योंकि हमने तीसरे समुद्र से ही प्रथम स्थान दिया है, क्योंकि वहां से वो 4-4 गुणा का प्रपोर्शन चलेगा। किंतु वही वो तो विमानों की संख्या भी बाद में, अभी तो हम चंद्रों की संख्या टोटल निकाल रहे हैं। वो तो विमानों की बात हम बाद में करेंगे, वो तो जितने चंद्र आएंगे उसको वो डायरेक्ट हम गुणा करेंगे, वो तो आसान है। यहाँ तो चंद्रों की टोटल निकालनी है पहले। देखो किंतु वही यानी तृतीय समुद्र ही आदि होता है, यानी बिगिनिंग में हमने वो 32 वाले वाला ही रखा है तीसरा समुद्र, उसकी जो 11,200 है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और वो कितने कितने गुना होकर, ये हमको सबकी टोटल निकालनी है, क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र के परभाग में उत्पन्न होने वाले राजू के अर्धच्छेद संबंधी शलाकाओं का अपनयन किया गया है। अपनयन यानी माइनस किया गया है, ये पहले शब्द आया था ना, यानी स्वयंभू रमण समुद्र के आगे जितनी भूमि है परभाग यानी आउट और आगे, वहां के जितने अर्धच्छेद है उसको भी उस असंख्यात में से माइनस किया है। शंका, स्वयंभू रमण समुद्र के परभाग में राजू के अर्धच्छेद होते हैं यह कैसे जाना? उसका समाधान, ज्योतिष देवों का प्रमाण निकालने के लिए 256 सुचंगुल के वर्ग प्रमाण जगत पत्र का भागहार बताने वाले सूत्र से जाना जाता है। हम पहले देख आए हैं ज्योतिष राशि निकालनी है तो कितनी है, तो जगत पत्र का भागहार बताया है। कितना है जगत पत्र का भागहार, तो 256 सुचंगुलों का वर्ग। दूसरी भाषा में कहना है तो कितने पत्रांगुल हो गए, बोलो, पनट्टी प्रमाण पत्रांगुल हो गए। 256 का भी वर्ग करो और सुचंगुल का भी वर्ग करो, तो सुचंगुल का वर्ग पत्रांगुल है और 256 का वर्ग पनट्टी है। तो ऐसा लिखते समय तो हमेशा 256 सुचंगुलों का वर्ग ऐसा ही कहेंगे, तो हमें वो समझना है ना। तो पनट्टी प्रमाण पत्रांगुल कहे तो घबराने की बात नहीं है, वही संख्या है। तो ऐसे सूत्र हमने पहले देखे हैं, उससे जाना जाता है कि स्वयंभू रमण समुद्र के प्रभाग में भी राजू के अर्धच्छेद होते हैं। शंका, जितनी द्वीप और सागरों की संख्या है तथा इन्हें और एडिशनली जितने जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद होते हैं, एक अधिक उतने ही राजू के अर्धच्छेद होते हैं, इस प्रकार के परिक्रम सूत्र के साथ वह पूर्वोक्त, उपर्युक्त के बदले उन्होंने पूर्वोक्त लिखा है, शुद्धि बताइए, पूर्वोक्त व्याख्यान क्यों नहीं विरोध को प्राप्त होगा? क्योंकि कहीं ऐसा भी कथन आया है कि जितने असंख्यात द्वीप और समुद्र है और उस प्लस जम्बू द्वीप के इतने अर्धच्छेद है, उसमें और एक अर्धच्छेद मिला देना तो इतने टोटल एक राजू के अर्धच्छेद होते हैं, ऐसा जहां कथन आया है उस कथन का और इस कथन का एक आपस में विरोध होगा, ऐसी शंका करके शंका है। तो उसका समाधान कहते, भले ही परिक्रम सूत्र के साथ उक्त व्याख्यान विरोध को प्राप्त होवे, किंतु प्रस्तुत सूत्र के साथ तो विरोध को प्राप्त नहीं होता है। अभी जो हम सूत्र देख रहे हैं उसके साथ उसका विरोध नहीं है, इसलिए इस ग्रंथ के व्याख्यान को ग्रहण करना चाहिए, परिक्रम के व्याख्यान को नहीं। यहाँ जो बताया जा रहा है यहाँ पर इसी व्याख्यान को ग्रहण करना है, क्योंकि वह व्याख्यान सूत्र से विरुद्ध है। परिक्रम का नहीं, परिक्रम का। और व्याख्यान सूत्र विरुद्ध होता नहीं, अन्यथा अति प्रसंग दोष प्राप्त होता है। छह से अधिक संख्यात अंकों के कम करने में, यानी छह ही अंक नहीं कम करना है और कुछ संख्यात कम करना है। धवलाकार ने हेतु यह दिया है कि स्वयंभू रमण समुद्र से परे जो पृथ्वी है वहाँ भी राजू के अर्धच्छेद पड़ते हैं, किंतु वहाँ ज्योतिषी देव नहीं है, इसलिए वहाँ के संख्यात अर्धच्छेद भी उक्त गणना में कम करना आवश्यक है। इस विधान से परिक्रम के जत्तियाणी दीव सागर रुवाणी, यानी जितने द्वीप और सागर है आदि कथन में जो विरोध पड़ता है उसके विषय में धवलाकार ने यहाँ स्पष्ट कहा है, उक्त कथन सूत्र विरुद्ध होने से ग्राह्य नहीं है, किंतु द्रव्य प्रमाणानुगम में उस विरोध का भी एक प्रकार से परिहार किया है। यानी ये विरोध भी कैसा मिट सकता है, जो पहले का कथन है वो भी विरोध है ही नहीं उसमें, तो वो कैसा नहीं है, तो उसके लिए देखो तृतीय भाग सूत्र चार पृष्ठ 3236, ये पहले हम पढ़ाए हैं, दोबारा जाके घर में पढ़ लेना तो समाधान हो जाएगा। शंका, वहाँ अर्थात स्वयंभू रमण समुद्र के परभाग में, परभाग यानी अभी आगे जो पृथ्वी है वहाँ पर ज्योतिष देव नहीं है, यह कैसे जाना। उसका समाधान, इसी ज्योतिषियों का प्रमाण लाने के लिए कहे गए इसी भागहार प्ररूपक सूत्र से जाना जाता है। अभी जो हमने जो भागहार देखा था उसी से वो जाना जाता है। यह तत्प्रायोग्य संख्यात रूपाधिक, तत्प्रायोग्य नहीं यथा योग्य, संख्यात रूपाधिक यानी संख्यात जो हमने अधिक उसमें डाला है, जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद प्लस वो छः प्लस ये संख्यात, तो संख्यात में छः मिलाएंगे तो संख्यात ही हो गए, इसलिए संख्यात रूपाधिक जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद ऐसा कहा। तो संख्यात रूपाधिक जम्बूद्वीप के अर्धच्छेदों से सहित द्वीप सागरों के रूप प्रमाण, रूप प्रमाण यानी संख्या प्रमाण, जितने द्वीप और सागरों की संख्या है उतने राजू संबंधी अर्धच्छेदों के प्रमाण की परीक्षा विधि पूर्वाचार्यों की उपदेश परंपरा का अनुसरण करने वाली नहीं है, किंतु केवल त्रिलोक प्रज्ञप्ति सूत्र का अनुसरण करने वाली है। यानी त्रिलोक प्रज्ञप्ति के सूत्र के अनुसार ये कथन हो रहा है। अन्य जो जितने द्वीप और सागर है उसमें जम्बूद्वीप के मिला दो उतने ही वो राजू के अर्धच्छेद नहीं है, परंतु अभी जो संख्या बता रहे हैं वो ठीक है, ये बात यहाँ बता रहे हैं, जो कि ज्योतिष देवों के भागहार को उत्पन्न करने वाले सूत्र से अवलंबित युक्ति के बल से प्रकृत गच्छ के साधनार्थ, प्रकृत गच्छ ने अभी यहाँ जो गच्छ बता रहे हैं तीसरे समुद्र से लेकर हमको वो संख्या निकालनी है, उसके लिए गच्छ कौन सा लेना है उस पर ये बहस चल रही है। उसके लिए यानी उसके साधनार्थ यानी उसके लिए प्रतिनियत सूत्र के अवष्टम्भ बल से विजृंभित अर्थात तत्प्रतिपादक सूत्र के आश्रय से गुणस्थान प्रतिपन्न, ये बात चल रही थी गुणस्थान प्रतिपन्न साधन के स्पर्शन कितना है, हाँ गुणस्थान प्रतिपन्न सासाधन समय दृष्टि आदि देवों से प्रतिबिद्ध जीवों से, सॉरी देवों से नहीं, सासाधन समय दृष्टि आदि जीवों से प्रतिबद्ध असंख्यात आवलियों के अवहार काल से उपदेश के अवहार काल के उपदेश के समान तथा आयत चतुष्कोण पुरुषाकार लोक संस्थान के उपदेश के समान हमने निरूपण किया है। क्या कहते हैं, जैसे लोक के आकार के बारे में पहले मृदुंगाकार मानते आए थे परंपरा से, फिर वो आयत समचतुरस्र कैसा है वो हमने यहाँ भी सिद्ध किया था, क्योंकि मृदुंगाकार उसका घनफल अलग आता है, 343 नहीं आता है, और जो हम दक्षिणोत्तर सर्वत्र वो आयत समान लेते हैं तो वो बराबर फिट आता है। ये भी धवलाकार ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताया। वैसे ही उन्होंने अन्य भी जो साधन समय दृष्टि वगैरह जो उनके लिए असंख्यात आवलियों के अवहार काल का जो उपदेश उसके बारे में भी उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया था। वैसे ही अब कहते हैं स्वयंभू रमण के आगे भी असंख्यात योजन की भूमि है, वो भी इन्होंने स्पष्ट रीति से यहाँ निरूपण किया है। प्रतिनियत सूत्र के अवष्टम्भ बल से विजृंभित या प्रतिपादित, यानी विशिष्ट सूत्र के आधार से बल से अवष्टम्भ, आधार से तत्प्रतिपादक सूत्र के आश्रय से, अवष्टम्भ बल से ने आधार से सूत्र के आश्रय से। अभी इन्होंने त्रिलोक प्रणति के सूत्र के आधार से सिद्ध किया कि राजू के अर्धच्छेद इतने ज्यादा होते हैं, वैसे उन्होंने वो त्रिलोक का जो आकार बतलाया है उसके बारे में भी अपना निरूपण किया था। ये इनकी विशेषता है धवलाकार की, ज्योतिष की का ये जो संख्या है उस संबंधी जो सूत्र है उसके आधार से उन्होंने ये सिद्ध किया कि स्वयंभू रमण समुद्र के आगे भी असंख्यात योजन भूमि है। वीरसेन आचार्य ने उन्होंने सूत्रों के आधार से ये सिद्ध किया है, और ये प्रस्तावना पढ़ना आप उसमें ये बात आई है, शुरू में प्रस्तावना में ये इस बात पर उन्होंने गौर किया है कि ये इनकी खास प्रस्तुति है और वो सूत्र के आधार से उन्होंने सिद्ध किया है। विशेषार्थ देखो, विशेषार्थ में बताते हैं, यहाँ धवलाकार ने दृष्टांत पूर्वक दार्ष्टांत को सिद्ध करने के लिए जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उनके कहने का अभिप्राय क्रमशः निम्न प्रकार है। पहला दृष्टांत प्रतिनियत सूत्राश्रय से सासाधनादि गुणस्थानवर्ती जीवों के असंख्यात आवलिकात्मक अंतर्मूर्त प्रमाण भागहार के उपदेश का दिया है। देखो इसका अर्थ क्या है, भागहार में अभी यहाँ अंतर्मूर्त से भागहार कहा, तो अंतर्मूर्त में आवली कितनी होती है, हाँ आवली में समय नहीं पूछा मैं, संख्या मैं तो धवलाकार ने क्या सिद्ध किया, देखो असंख्यात आवलिकात्मक अंतर्मूर्त, आगे देखो जिसका अभिप्राय समझने के लिए द्रव्य प्रमाणानुगम तृतीय भाग पृष्ठ 59 के मूल पाठ और विशेषार्थ को देखिए, ये जाकर देखना जरूर, लिख के लेना है कागज पर क्या देखना है। यहाँ पर उल्लेख करने का प्रयोजन यह है कि संख्यात आवलियों का एक अंतर्मूर्त होता है, इस प्रचलित एवं सर्वमान्य मान्यता को भी एदे ही पलिदोगम अवहिरदि अंतो मुहूर्त काले न, ये द्रव्य प्रमाणानुगम का सूत्र 6, इस सूत्र के आधार से अंतर्मूर्त इस पद में पड़े हुए मुहूर्त से अधिक काल का ही लेना चाहिए, यानी वहाँ मुहूर्त से थोड़ा बड़ा काल है उसको भी अंतर्मूर्त कहा था, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं, और वो उन्होंने सूत्र के आधार से सिद्ध किया था जो हमने पहले पढ़ा भी था। धवलाकार की जो विशेषताएं हैं ना, कहाँ कहाँ उन्होंने क्या सिद्ध किया उसमें से ये एक बात है, ऊपर उन्होंने लिखा था तीसरे लाइन में चौथे कि हमने ऐसा ऐसा निरूपण किया है, तो किस किस बारों में उन्होंने पूर्वापार जो कथन चलता आया था उसका विरुद्ध, परंतु सूत्र से विरुद्ध नहीं, सूत्रों के आधार से ही उन्होंने ये सिद्ध किया था उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। ये एक बात सिद्ध की उन्होंने धवलाकार ने। दूसरी बात, दूसरा दृष्टांत आयत चतुरस्र लोक संस्थान के उपदेश का दिया है, जिसका अभिप्राय समझने के लिए क्षेत्रानुगम यानी इसी चतुर्थ भाग के पृष्ठ 11 से 22 तक का अंश देखिए। हमने देखा था ना, वो पहले मृदंगाकार बनाया, फिर उसका छेद किया, उसका घनफल निकाल के देखा था, वही बात यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर उल्लेख करने का प्रयोजन यह है कि यानी यहाँ वो बातें क्यों बार बार बता रहे हैं, ये पहले आवली वाली बात अंतर्मूर्त वाली बात और ये मृदुंगाकार वाली बात यहाँ क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं कि धवलाकार के सामने विद्यमान कर्णानुयोग संबंधी साहित्य में आयत चतुरस्र लोक के आकार का विधान या प्रतिषेध कुछ भी नहीं मिल रहा था। यानी आयत समचतुरस्र वो उसका आधार और विरोध ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो भी उन्होंने प्रतर समुद्घातगत केवली के क्षेत्र के साधनार्थ कही गई दो गाथाओं के आधार पर यह सिद्ध किया कि लोक का आकार आयत चतुष्कोण है, न कि अन्य आचार्यों से प्ररूपित 164 पूर्णांक 328 बाय 1356 घनराजु प्रमाण मृदंग के समान। मृदंग का आकार कल्पित करके उसका घनफल निकाल के उन्होंने दिखाया था, जो कि 343 राजु नहीं आता है। यदि ऐसा न माना जाएगा उक्त दोनों गाथाओं को अप्रमाणता और लोक में 343 घनराजुओं का अभाव प्राप्त होगा। यानी ये भी कथन शास्त्र के ही है, 343 घनराजु है और फिर केवली के समुद्घात का क्षेत्रफल इतना है, ये शास्त्र से ही उन्होंने ये बातें निकाल कर बता दी। इसलिए लोक का आकार आयत चतुरस्र ही मानना चाहिए, ये दूसरी बात। अब यहाँ धवलाकार ने जिस प्रकार उक्त दोनों बातों को तात्कालिक कर्णानुयोग संबंधी शास्त्रों में उल्लेख अथवा आचार्यों की उपदेश परंपरा के नहीं मिलने पर भी उक्त प्रकार की सूत्रावलंबित युक्तियों के बल से, यानी सूत्रों के आधार से ही ये युक्ति की उन्होंने, उसके बल से उन्हें सिद्ध किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर्णानुयोग के ग्रंथों में या आचार्य उपदेश परंपरा में उपलब्ध नहीं होने पर भी प्रतिनियत सूत्राश्रित तर्क के बल से, यानी अपने मन की बात नहीं है, सूत्रों के आधार से ही उन्होंने ये बात निकाली है, उस तर्क के बल से वे यह सिद्ध कर रहे हैं कि स्वयंभू रमण समुद्र के परभाग में भी असंख्यात द्वीप समुद्रों के व्यासरुद्ध योजनों से संख्यात हजार गुणे योजन जाकर, क्या कहते हैं, जितना क्षेत्र असंख्यात द्वीप और समुद्रों ने रोका है, जितना क्षेत्र रोका है, देखो व्यासरुद्ध योजनों से, ये व्यास हो गया दोनों का मिलकर व्यास, यानी ये स्वयंभू रमण अंतिम वाला है और ये अंतिम, और उसके अंदर सब असंख्यात द्वीप समुद्र, तो इनका जो व्यास है डायमीटर, या स्वयंभू रमण समुद्र की आउटर सूची ले लो, आउटर डायमीटर, उससे भी क्या कहते हैं, व्यासरुद्ध योजनों से संख्यात हजार गुणे योजन, इससे अगर संख्यात हजार गुणा, दो गुणा चार गुणा पांच गुणा नहीं, कितने हजारों गुणा, क्योंकि अगर इससे हजारों गुणा अगर हम नहीं मानते तो पूरा अर्धच्छेद यहाँ पर कैसे पड़ जाता। पहला अर्धच्छेद तो मान लेते जम्बूद्वीप में पड़ गया, द्वितीय अर्धच्छेद यहाँ पर पड़ेंगे, तीसरा अर्धच्छेद यहाँ पर पड़ा, चौथा अर्धच्छेद यहाँ पर पड़ा, यानी कितने संख्यात अर्धच्छेदों के बाद स्वयंभू रमण समुद्र का नंबर आएगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल है ना ये। हाँ असंख्यात हजार, हाँ देखो ना संख्यात हजार, असंख्यात नहीं, संख्यात हजार गुणे योजन, योजनों के, हाँ उसको संख्यात हजार से गुणा करना, यानी पूरे पूरी जो आउटर सूची है, आउटर डायमीटर, उससे जो भूमि है वो संख्यात हजार गुना है, हाँ बहुत ज्यादा है, तभी तो वहाँ अर्धच्छेद पड़ेंगे ना, नहीं तो वहाँ अर्धच्छेद कैसे हो गए। हाँ वो स्वयंभू रमण समुद्र के कितने बाहर चला जाएगा, कितने ही बार बाहर, कितने अर्धच्छेद भूमि में ही, कितने अर्धच्छेद होते रहेंगे, बाद में स्वयं रमण का समुद्र का नंबर आएगा। हाँ उससे बहुत ज्यादा है, हजार संख्यात हजार गुना, खाली डबल नहीं है, संख्यात हजार गुना कहा उन्होंने, इसलिए बाहर भी संख्यात अर्धच्छेद बाहर पड़ते हैं, इन्होंने ये सिद्ध किया है। तीसरा तिर्यक लोक की समाप्ति होती, अर्थात स्वयंभू रमण समुद्र की बाह्य वेदिका के परे भी पृथ्वी का अस्तित्व है, वहां भी राजू के अर्धच्छेद उपलब्ध होते हैं, किंतु वहां पर ज्योतिषी देवों के विमान नहीं है। यानी इसलिए हमने वो गच्छ कितना निकालना है, तो बाहर के अर्धच्छेद और बीच वाले जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद और वो पुष्कर तक 6 अर्धच्छेद, इन सबको हमने निकाल दिया। अढ़ाई द्वीप का मत कहो, राजू के अर्धच्छेद में से ही वो अंतिम छह अर्धच्छेद कहो, अढ़ाई द्वीप का अर्धच्छेद कहोगे तो प्रमाण बदल जाएगा। हाँ, जम्बूद्वीप के प्लस 6 अर्धच्छेद, क्योंकि ये गणित का जो है ना, वो अपनी भाषा बदल देने से उसका अर्थ बदल जाता है। देखो ये तो उन्होंने गच्छ कितना लेना है, तो असंख्यात लेना है उसकी बात की। इसलिए यहाँ पर यह ऐसा ही है, इस प्रकार एकांत हट पकड़ करके असत आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उपदेश हमें तो परंपरा से प्राप्त हुआ है, तो ऐसा ही है, क्योंकि हमने तो ऐसा ही सुना है ना, ऐसा असत आग्रह नहीं करना, क्योंकि परम गुरुओं की परंपरा से आए हुए उपदेश को युक्ति के बल से अयथार्थ सिद्ध करना अशक्य है, तथा अतीन्द्रिय पदार्थों में, क्योंकि ये तो इंद्रिय गम्य तो बातें है ही नहीं है, अतीन्द्रिय पदार्थों में छद्मस्थ जीवों के द्वारा उठाए गए विकल्पों के अविसंवादी होने का नियम नहीं है। अतएव पुरातन आचार्यों के व्याख्यान का परित्याग न करके, क्या कहा, परित्याग न करके उसको, ये सर्वथा झूठा, ऐसा नहीं, हाँ बिल्कुल, उसको भी आप कहो और फिर सूत्रों के आधार से ये भी युक्ति उसको भी स्वीकार करना कहते हैं, अकेला कोई एकांत पक्ष नहीं ग्रहण करना। तो परित्याग न करके यह भी दिशा हेतुवाद के अनुसरण करने वाले, यानी तर्कवाद के, यानी तर्क के आधार से, तर्क के अनुसरण करने वाले व्युत्पन्न शिष्यों के अनुरोध से, यानी तर्क से जिन्होंने जान लिया वो व्युत्पन्न शिष्य कहेंगे, तथा अव्युत्पन्न शिष्य जनों के व्युत्पादन के लिए दिखाना चाहिए। जिसको पता नहीं है उसको दिखाने के लिए तर्क के आधार पर ये भी बातें दिखाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर संप्रदाय के विरोध की आशंका नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा मत समझना कि यहाँ पर यह परंपरा संप्रदाय का विरोध हो रहा है। अब यहाँ तक के गच्छ कितना लेना है उसकी चर्चा चले। अपना तो मूल प्रयोजन क्या है, सभी द्वीप समुद्रों में, तीसरे समुद्र से लेकर स्वयंभू रमण समुद्र तक के सभी द्वीप समुद्रों में चंद्रों की संख्या भी हम निकालेंगे। परिवार को बाद में लेंगे, उसमें पहले मुखिया को लिया है। देखो, ऊपर बताए गए इस विधान से प्ररूपित गच्छ को विरलन करके, अब वो असंख्यात जो संख्या है तीसरे समुद्र से लेकर असंख्यात द्वीप समुद्रों की, उसको एक 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 करके विरलन करेंगे। प्रत्येक एक एक के ऊपर चार चार को देय रूप से देकर परस्पर गुणा करके, ये चार चार गुणा हमने देखा ना, चार चार गुणा है, उसको परस्पर देय रूप से देकर उनमें से एक कम करें, पुनः आदि धन से संगुणित करें, पुनः एक कम गुणकार का भाग दे, तब इच्छित राशि उत्पन्न होती है। हमको सभी टोटल निकालनी है और वो है तो चार चार से गुणित। तो क्या करना, ये जो गाथा खंड स्वरूप सूत्र है, नीचे उदाहरण दिए वहां से पढ़ेंगे हम, पहले इसको पढ़ते हैं। सूत्र की संकलन राशियों को निकाल कर दोनों संकलन राशियों का धन यानी जोड़ करके इस राशि में से तीसरी संकलन राशि को घटा देने पर चंद्रबिंब की शलाकाएं उत्पन्न हो जाती है। यानी चंद्रबिंब आदि पहले निकलेंगे, टोटल ज्योतिष की नहीं बात चल रही, चंद्रबिंबों की शलाका, हाँ शलाका उसके निकले। तो देखो उसका हिस्सा जैसा, देखो गच्छ 32, ये तीसरे समुद्र की बात चल रही, आदि धन 11,200, यानी तृतीय समुद्र का सर्व संकलन, उसको यहाँ आदि धन कहा। आदि तीसरे समुद्र की जो टोटल संख्या है चंद्रों की, उसको आदि कहा। सर्व द्वीप समुद्रों की संख्या असंख्यात है, वो असंख्यात के लिए तीन कल्पना की उन्होंने। तो अभी उन्होंने बताया था वो असंख्यात को विरलन कर दो, तो तीन का विरलन किया तो तीन बार एक 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 लिखा। हमारे चार चार गुना है ना आदिद, तो चार चार गुना है, इसलिए हर एक के ऊपर चार चार रखो, तो चार गुना चार गुना चार 64 आ गए। 64 में से एक कम करना है तो 63 आ गए। आपको याद होगा शायद, ये जो हमने निषेक रचना आदि देखते थे तो उसमें भी दो 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 से गुणा करने का, वो नाना गुणानी से अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालते थे, फिर एक कम करते थे, है ना। तो यहाँ चार चार का गुणा है तो चार चार से गुणा करना, एक कम करना, 63 आ गए। 63 से जो आदि वाला है 11,200, उसको गुणा करेंगे, हा? और चार माइनस एक से उसको भाग देना है, अपना गुणकार चार है इसलिए तीन से भाग देना, तो संख्या आती है 235,200। अब उसमें जो द्वितीय संकलन है, यहाँ क्या कहा उन्होंने, दो संकलनों की तो टोटल करना, प्रथम संकलन द्वितीय संकलन और उसमें से तृतीय संकलन माइनस करना, तो टोटल संख्या आने वाली है। तो दूसरे संकलन में क्या करना उन्होंने, देखो दूसरे संकलन में उतनी बार विरलन करना, हर एक के ऊपर चार चार लिखना वैसे, और 64 आ गए, 64 में से एक गया 63 आ गए। अब इस 63 को 64 से गुणा करना और वही तीन से भाग देना, चार माइनस एक से, तो 1344 आ गए। और जो तृतीय संकलन है तो जितने असंख्यात है उतना विरलन करना, हर एक के ऊपर अब दो दो लिखना, आपस में गुणा करना, यहाँ तो 8 आ गए, 2 × 2 × 2, उसमें से एक माइनस करना तो 7 आ गए। ये दो दो मेरे ख्याल से उसके दो गुना उसका गच्छा होता है क्या, मुझे भी पता नहीं चला। तीन संकलन क्यों अलग अलग निकाले मुझे भी बराबर पता नहीं चला, उसका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है तीन बार संकलन क्यों किया। और वो अब देखिए आगे कुछ लिखा होगा तो देखते हैं। तो पहली दो फिगर्स उन्होंने ऐड की, प्रथम संकलन प्लस द्वितीय संकलन और माइनस तृतीय संकलन, तो उसमें से समस्त चंद्र शलाकाएं निकली, तीन बार ही किया तो इतनी निकली। हाँ, इस प्रमाण में पहली बताई हुई प्रथम पांच द्वीप समुद्रों संबंधी चंद्रों की संख्या सम्मिलित नहीं है तो वो निकाल उसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो कितनी है, हाँ, जम्बू द्वीप की 2, लवण समुद्र के 4, फिर आगे कौन है, धातकी खंड की 12, फिर 42 और 72, कितनी हो गई, 132 हो जाएगी। उसमें वो सम्मिलित नहीं कहते, ठीक यही संख्या ये तीनों का है ना, तीनों की टोटल की चार चार से गुणित करने पर, हमने पहला नंबर दिया था त्रिस्तीय समुद्र को, दूसरा नंबर दिया था चौथे द्वीप को, और तीसरा नंबर देंगे चौथे समुद्र को, एक द्वीप एक समुद्र, उन तीनों की टोटल निकाल के देखते हैं क्या यही सूत्र वहां भी होता है कि नहीं होता। पहले हमने देखा ना, देखो पेज नंबर, पहले पेज पर देखो 155 पृष्ठ पर, इसको अभी कल ही देखेंगे, 154-155 है ना, हाँ दो लाइन नीचे लिखा 155 पर। अब ये जो एक दो और तीन की जो संख्या है टोटल सर्वधन, उनकी टोटल भी इतनी ही आती है, वो हम कल देखेंगे, इसको दोबारा इसको फिर ब्रश अप करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझेल